मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 20 सितंबर 2019 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने थोड़ी सी एक फिलोसफिकल अंदाज अख्तियार करते हुए आप लोगों से बातें की थी और मुझे लगता है कि वो बातें कुछ ऐसी हो गई थी जो शायद बहुत से लोगों के दिमाग के लिए अपच सिद्ध हुई हो, जिसे आप कह लीजिए कि गरिष्ठ भोजन रहा हो। तो आज मैं बहुत ही आपको सुपाच्य भोजन उपलब्ध कराने जा रहा हूं, यानी कि बहुत ही हल्की फुल्की बातों के माध्यम से आज मैं लाइफ मैनेजमेंट पर कुछ बातें करूंगा। और सच पूछिए तो आज के लिए मैंने जो विषय चुना है ये आपको थोड़ा सा रोचक भी लगेगा, और यदि आप इसे शीर्षक ही देना चाहें तो आप इसे शीर्षक दे सकते हैं, अजीब प्रेम का गजब चक्कर। मैंने एक फिल्म से ही प्रेरित होकर के इसका शीर्षक रखा है, अजीब प्रेम का गजब चक्कर। तो आइए, इससे पहले मैं कि अपनी बात शुरू करूं या आप लोगों से कोई प्रश्न पूछूं या यूं कह लीजिए कि अपनी बात स्थापित करूं, एक कहानी सुनाता हूं। और मैंने आज की इस कहानी का जो पैटर्न चुना है, आप यूं कह लीजिए कि कौन बनेगा करोड़पति के तरह का पैटर्न है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति अब फिर से स्क्रीन पर आ चुका है। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पैटर्न पर भी कुछ बात करके देखते हैं, शायद आप सब इसे स्वीकार करें, आप सब इसका स्वाद ले सकें। तो पहले मैं, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसी तरह से मैं प्रश्न तो नहीं पूछ रहा हूं लेकिन आपको एक कहानी जरूर सुना रहा हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, इसे आप कहानी भी कह सकते हैं या सच पूछिए तो आप इसे सच्ची घटना भी कह सकते हैं, यह आपका अधिकार है। और अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप कुछ गलत कह रहे होंगे। पहले आप इस कहानी को सुने, फिर मैं इस कहानी के आधार पर आपको चार विकल्प दूंगा कि आप बताइए कि इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प बेहतर होगा, और फिर आप सब अपने अपने ढंग से उनमें से एक का उत्तर, के रूप में स्वीकार करके अपना अपना विश्लेषण कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी से। दोस्तों, एक लड़का था, नौजवान लड़का था कह लीजिए या है कह लीजिए। वो जब तक 12th में पढ़ रहा था उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, हमेशा उसका स्कोर 90% होता था। इसको लेकर के उसके माता पिता भी बहुत खुश थे, उसके खुद के अंदर भी बहुत बड़ा आत्मविश्वास था और वो बड़ा खुश था, मस्त था। वो कॉलेज पहुंच गया, पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट था। कॉलेज में जब वो पहुंचा तो अब उम्र भी हो चुकी थी और कॉलेज में थोड़ा सा माहौल भी कुछ अलग तरीके का होने लगता है, तो किसी लड़की के साथ उसका प्रेम हो गया। और केवल उसी का ही प्रेम नहीं हो गया बल्कि अच्छी बात यह थी कि लड़की का भी उसके प्रति प्रेम हो गया। और जब दोनों का प्रेम हो गया तो अब बहुत सा वक्त जो है प्रेम प्रसंगों में बीतने लगा, दोनों को बहुत अच्छा लगने लगा। और सच पूछिए तो दोनों को ये बिल्कुल निश्चित हो गया कि हम विवाह भी करेंगे। पता नहीं अब लड़की को इस बारे में कितना अधिक बिल्कुल भरोसा ही था कि हम विवाह करेंगे, लेकिन जो लड़का है, यानी कि अब लड़का लड़की न कहकर कि इसको प्रेमी और प्रेमिका कहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन प्रेमी को ये लगने लगा कि नहीं, मैं इसी से विवाह करूंगा। और सच पूछिए तो वो कहीं नहीं, वह उस अपनी प्रेमिका का अपने आप को पति भी मानने लगा। चलिए, प्रेम प्रसंग चलता रहा, 2-3 साल बीत गए, लेकिन डेफिनेटली लड़के के जो मार्क्स थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। इसका भी उसे अफसोस था, लेकिन वो प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि उसे लग रहा था कि इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए अगर ठीक है मार्क्स वार्क्स थोड़े से कम भी हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत घाटे का सौदा नहीं है। खैर, अब संयोग कुछ ऐसा हुआ कि वह लड़की वहां से चली गई, राइट, उसका स्थानांतरण हो गया या जो भी कह लीजिए, किसी वजह से उसकी प्रेमिका जो है वहां से चली गई। जब प्रेमिका चली गई तो उससे बातचीत होनी बंद हो गई, उसका फोन आना बंद हो गया। कुछ दिनों तक तो उसने इंतजार किया प्रेमी ने, लेकिन अब उससे बहुत दुख होने लगा, तकलीफ होने लगी, उसका मन आशंकाओं से घिरने लगा। एक दिन अचानक प्रेमिका का फोन आ गया, बेहद खुशी हुई जब प्रेमिका का फोन आ गया तो उसने पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं फोन कर पा रही थी, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो मेरा मोबाइल था वो गिर गया था, टूट गया था, खराब हो गया था, तो बस मैं फोन नहीं कर पा रही थी। चलिए, बात खत्म हुई। इसके बाद फिर से फोन आना बंद हो गया। अब इसको फिर तकलीफ होने लगी, बेचैनी होने लगी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। फिर एक दिन उसके पास फोन आया, फिर से फोन आ गया और उस प्रेमिका ने कहा कि अब तुम मुझे कभी फोन मत करना और मैं भी तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी। उसने पूछा कि भाई क्यों, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि नहीं, यहां मुझे अब एक नया प्रेमी मिल गया है। ये बहुत परेशान हुआ, बोले कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारा केवल प्रेमी ही नहीं हूं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, कैसे कर सकती हो? तो उसने कहा कि अच्छा लो, तुम मेरे प्रेमी से बात कर लो। और दोस्तों, प्रेमिका ने वह फोन अपने नए प्रेमी को थमा दिया। अब पुराने प्रेमी और नए प्रेमी में बहस होने लगी, बातचीत होने लगी, तुम धोखेबाज हो, तुम ये हो वो हो। चलिए, अब जो इस तरह की बातें होती हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, चलिए, बात खत्म हुई और उस खत्म होने के साथ ही सच पूछे तो ये प्रेम प्रसंग भी खत्म हो गया। अब ये जो प्रेमी है ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ जरूरत से ज़्यादा ही परेशान है। तो अब मैं आपके सामने चार विकल्प रख रहा हूं और ये विकल्प इस बात के हैं कि प्रेमी को क्या करना चाहिए। प्रेमिका को तो अब कुछ क्या करना चाहिए पूछने का सवाल ही नहीं है, वो अपने नए प्रेमी के साथ है। अब इस प्रेमी को क्या करना चाहिए, चार विकल्प हैं, इनमें से आप अपने लिए एक विकल्प चुनिए। मान लीजिए कि यह प्रेमी आपके पास सलाह लेने के लिए आया है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप क्या सलाह देंगे? या आप यूं भी कह सकते हैं कि यह घटना अगर आपके साथ घटित हुई है, अगर आप उस उम्र में हैं, तो आप अपने बारे में फैसला कर लीजिए कि आप क्या करते। तो देखिए, चार विकल्प हैं, इसमें कोई लाइफलाइन नहीं है। पहला विकल्प है कि अब उस प्रेमी को देवदास बनकर, जो प्रेम का इतिहास होता है उसमें अमर हो जाना चाहिए, देवदास बन जाना चाहिए। दूसरा विकल्प है कि इस प्रेमी को बकायदे वहां जाना चाहिए जहां उसकी प्रेमिका है, प्रेमिका को बुलाकर बात करनी चाहिए या उससे मिलकर बात करनी चाहिए, और उसके प्रेमी से भी बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई, और बातचीत करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए अगर हो सकता हो तो। ये दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प है कि बेहतर होगा कि वह प्रेमी को भूल बेहतर होगा कि वह अपनी प्रेमिका को भूल जाए और अपने पढ़ाई लिखाई में मन लगाए, क्योंकि पहले से ही वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, अपना जीवन बनाए, अपना कैरियर बनाए। और चौथा है कि ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि वो किसी साइकेट्रिक के पास जाए, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके पास जाए, उनकी सलाह ले, चाहे वो साइकोथेरेपिस्ट के पास चला जाए, चाहे साइकेट्रिक के पास चला जाए, कुछ मेडिसिन वेडिसिन ले और अपनी स्थिति को ठीक करे। दोस्तों, ये चार विकल्प मैंने आपको दिए हैं, चार विकल्प। अब आप इनमें से अपने लिए एक एक विकल्प चुन लीजिए, केवल एक ही चुन सकते हैं, और उस पर विचार कीजिए कि क्या होना चाहिए। मुझे मालूम है कि दूसरे के लिए जब आप बात करेंगे, यानी सलाह देने की जब स्थिति होगी, देखिए यहां भी इस बात को भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, तो मालूम है कि आपका विकल्प कौन सा होगा। बड़े बुजुर्गों की तरह आप कह देंगे कि नहीं नहीं सब उसके जो भी घटना हुई है उसे भूल जाना चाहिए और उसे अपने कैरियर के लिए काम करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में मन लगाना चाहिए, ये कहेंगे, ज्यादातर यही कहेंगे, सलाह देनी होगी। लेकिन जब खुद के ऊपर बात आए तो, क्योंकि जब हम सलाह दे रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या उस सलाह को मानना इतना आसान है। तो आप इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना विकल्प चुनिए। दोस्तों, यहां मैं अपनी कोई बात आपसे कहने नहीं जा रहा हूं, आप सोचिए, आप सोचिए, आप सोचिए, क्योंकि आज शुक्रवार है, दो दिनों तक अब कोई लाइफ मैनेजमेंट सुनने के लिए आपको समय नहीं निकालना होगा, तो आपके पास वक्त भी ढेर सारा है, इस पर सोचिए। और साथ ही मुझे इजाजत भी दीजिए, दो दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।